From the conference center
at Salt Lake शहर के टेंपल स्क्वायर के सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का 179th वर्ष महासम्मेलन है जिसे भविष्यता गिरजाघर के महाअधिकारियों और महाप्राधिकारियों के चुने गए हैं और सोल्ट लेक एरिया इंस्टीट्यूट और रिलीजन संकुल क्वायर द्वारा इस सभा का संगीत प्रदान किया है। बर्नवेल कम्युनिकेशन द्वारा इस प्रशासन को जानता सेवा के रूप में प्रोजित की गई है। इस कार्यक्रम का कोई भी पुनर्प्रार्थापन अभिलेखन प्रतिकलन का अन्य इस्तेमाल बिना लिखित अनुमति नहीं है। डीडीएफ उक्टोफ गिरजाघर के प्रथम अधिकारी के दूसरे सलेखा इस सभा का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the second session of the 179th annual General Conference of the Church.
दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का वार्षिक महासम्मेलन का प्रसंग प्रधान गिरजाघर के महाअधिकारी महा चुने गए हैं संगीत के लिए हैं। हम उन सभी को स्वागत करते हैं जो उपस्थित हैं इस दूरदर्शन रेडियो या इंटरनेट के महाजन द्वारा भाग रहे हैं और उन कई लोगों का जो दुनिया के भिन्न भागों में स्टेक केंद्रों में देख रहे हैं जहां सम्मेलन सैटेलाइट ट्रांसमिशन द्वारा जा रहे हैं। सोल्ट लेक एरिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजन का संकुत गायन मंडली द्वारा इस सभा की संगीत प्रदान किया गया जिसके निर्देशक रिचर्ड टी डेका और स्टीवन पी संगत है से बॉनी गुडलिफ और लिंडा मार्गरेट ओगन पर होंगे। इस सभा के शुरुआत गायन इस गाने द्वारा शुरुआत करेंगे, कम दाउ ग्लोरियस डे ऑफ प्रॉमिस। फिर एल्डर जो स्पेंसर जे कोंडी जो 70 के हैं उनके द्वारा प्रार्थना की जाएगी।
Come as friends.
Our righteous and holy Father in heaven,
हमारे परमपिता परमेश्वर, हम आभारी हैं कि आज हम मिल सके हैं आप भविष्यवक्ताओं के आगे और जो प्रोफेट्स और रेवलेटर है जिसे हम सस्टेन करते हैं जिनको आपने पवित्र आत्मा दिया है आप हमारे हृदय को खोलें कि हम उनके बातों को सुने और उनका पालन करें और इस समय कि हम अपने आप को बदलना चाहे और आपके पास आकर रह सके यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन अभी गायन मंडली ने गाया कम ओ दाउ किंग्स ऑफ किंग्स प्रधान मॉनसन ने कहा कि मैं गिरजाघर के महा अधिकारियों चरित्र सरतर और महासहायक अधिकारियों को समर्थन मत के लिए प्रस्तुत करूं। ब्रदर रॉबर्ट डब्ल्यू कैंटवेल गिरजाघर के ऑडिटिंग के प्रबंध निर्देश चर्च ऑडिटिंग डिपार्टमेंट पर रिपोर्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद उन ब्रदर ब्रूक पी हेल्स प्रथम अधिकार के सचिव जो वर्ष 208 के गिरजाघर के स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। भाइयों बहनों, यह प्रस्तुत किया गया है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉनसन को अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजाघर के भविष्यवक्ता पैगंबर और देव और प्रधान के रूप में समर्थन करते हैं। हेनरी बेनियन एरिंग को प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार और डेटिया फ्रेडरिक कुस्तोफ को प्रथम अध्यक्षता के दूसरे जो सहमत है वो प्रकट करेंगे। जो सम्मत नहीं है अगर कोई है वो प्रकट करे। ये प्रस्त किया गया है कि हम बोइट केनेथ पेका को 12 दूतों की प्रसिपत के प्रधान के रूप में प्रसन्न और उन्हें प्रसिद्ध के संदेश के रूप में बोइट के पेका एल्टोम पेरी रसल एम नेल्सन डेलन ही चॉक्स एम रसल बेलेट रिचर्ड जी स्कॉट रॉबर्ट डी हेल्स जेफरी आर हॉलन David A. Bettner, Quentin L. Cook, and D. Dot Christopherson, and Neil L. Anderson. जो सहमत है कृपया प्रकट करें। कोई असहमत प्रकट करें। यह प्रस्तुत किया गया है कि हम प्रधान अस्त्र और सलाहकारों और 12 दूतों को भविष्यवक्त पैगंबर और दूतों के रूप में समर्थ करें। जो सहमत है कृपया प्रकट कीजिए। जो असहमत है अगर कोई है प्रकट करे। यह प्रस्तावित किया गया है कि हम इन्हें मई फेस्ट 2009 से क्षेत्रों संतरों से पढ़ने से मुक्त किए।
It is proposed that we release
the form as Area 70s के द्वारा गया है। Gooden J. Emerin, Wilfred Anderson, Koichi Aoyagi, Jose Boza, G. Len Barakchi, John J. Chipman, Yon Hon Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. Da Silva, James Dalton, David W. Carr, E. Ains, Eduardo E. Fernando, Luis G. Francha, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopoate, Tora Hota, William K. Jackson, Ben Kikuchi, Mikul A. Lee, Yong Hong Lee, Alfredo Hilito Liremos, James B. Martino, Lamon W. Mon, Kent H. Modoc, Brent H. Nelson, Alexander A. Nefes, Russell T. Ostkostorphon, Hudson T. Paula Perla, Petro J. Penna, Errol S. Pentman, Neil E. Pitts, Gary L. Peacock, Dale G. Reinhold, Ronald A. Stone, Jean Tafon, and Alan Young. Unki baatein seva karne ke liye hamare abhar. Kripa prastut kijiye.
It is proposed that we release brothers A. Roger Merrill.
ये प्रस्तुत किया कि हम उन्हें रिलीज करें जो William D. Oswald, Sunday School General Presidency के proposed.
That we release brothers Charles W. Dahlquist.
कि हम Charles T. Dahlquist को रिलीज करें.
Michael A. Nider.
और Michael A. Nider को ऐसा Young Men General Presidency. हम रिलीज करते हैं संडे स्कूल और यंग मैन के बोर्ड्स के जो सहमत है कृपा कीजिए। यह प्रस्तुत किया गया कि हम डोनाल्ड है पर्सनल मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंसी 70 के फोरम्स के दो जो फेबर में है मैनिफेस्ट कीजिए। जो कोई है वो प्रपोज किया गया है कि फेस कॉरम ऑफ द 70 के मेवन बी आर्नल्ड ह्यूंग वॉन चोई
Nielsen.
Brent H. Nielsen.
Dale G. Renland.
Dan Renland. Michael
T. Ringwood.
Michael T. Ringwood. And Joseph T. Satati. Our new member, Sekar Koram 70K. Wilfred W. Henderson. Okuichi Aoyagi. Bruce A. Carlson.
Bradley D. Foster.
Bradley D. Foster.
James B. Martino.
Kent F. Richards.
And Gregory A.
और ग्रेडरी ट्रेसर सभी के जो फेवर है मैनिफेस्ट कीजिए और जो नहीं करना चाहते हैं सेम साइन से कर सकते हैं ये हम सस्टेन करते हैं ये नए एरिया 70 को स्थिति करते हैं ऑगस्ट विक्टर आर अरवियता कॉन्सेविया टुक्सेविया टेनेसी पेमॉल थॉनस एम चैन
Carl B. Cook,
Carl B. Kevin R. Duncan,
Franco,
Carol W. Kong, Haro Juno, Larry S. Kreacher, Von G. Keech,
Katsumi Kasume,
Yaman Laboriel,
Christopher Lansing,
David E. Lesser,
Paolo
C. Laurel,
Stephen J. Lent,
Dimitri Marchenko,
Abraham Martinez,
Hugo M. Martinez, Rabbi Mensa, Christopher B. Mandy,
Hifumi
Nakachuka,
Heikoi
Noo,
Chikao
Boshi,
Alejandro
S. Batania,
Renato
M. Dickler,
Marcos
R. Prito,
Jonathan
C. Roberts,
J.
Craig
Rowe,
Andre Switzer,
Seldon,
T. Marama
Tarati,
Juan G.
Tate,
Espen
Heuzi,
Jake Tewart,
and
Randy
Walter
Wilkinson.
Sabi
jo sayog dete, manifest kijiye. जो नहीं है उस ये प्रपोज किया गया है रसल एम ट्रेंट ऑफ सस्टोन को नया जनरल प्रेसिडेंट संडे स्कूल के लिए उसके साथ में डेविन री मकोंकी फर्स्ट काउंसलर के रूप में और मैथ्यू और रिचर्डसन सेकंड काउंसलर के रूप में ये प्रपोज किया गया है कि सस्टेन किया रेड डी पैक एज एन Young man ke general president, Larry Minor Gibson as first counselor, Adrian Ochoang Quintana, second counselor ke roop mein, jo sammelat hai, manifest kijiye. Aur jo nahi karna chahte hain, wo bhi kar sakte
hain.
Ye, aur sabhi general authority aur samrashti ke wo, jaise bhi hai, sabhi jo faiba mein manifest kijiye.
Any opposed may manifest.
Any opposer will be कर सकते हैं.
धन
प्रधान मॉनसन जहाँ तक मैंने देखा सम्मेलन केंद्र में मातन चल रहा किया गया थे. धन्यवाद भाइयों बहनों तुम्हारे सम्मंत्रण मत के लिए और तुम्हारे विश्वास श्रद्धा और प्रार्थनाओं के लिए. अब हम एल्डर हॉस्ट्रम के लिए और जो जो नया बुलाया गया है तू अपने जगह पर आकर बैठ जाए. जैसे प्रेजेंट मॉनसन ने कहा था इन लोगों को लंबा चलना पड़ेगा. सभी को हम निमंत्रण देते हैं और मुबारकबाद देते हैं especially खास करके एल्डर एंडरसन को. अपोस्टल लोगों के कॉलिंग के लिए यीशु मसीह के वक्त के समय से शुरुआत किया गया था. 12 चेला सबसे पहले बुलाया जाता है सब बाद में. अब हम सुनेंगे
of the Quorum of the 12 Apostles. I am neither. T- to the first presidency.
अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर के प्रथम अधिकारी के लिए प्यारे भाई भ्राताओं, जैसे डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स के भाग 120 में ईश्वरीय वचन द्वारा निश्चित किया गया है, डिस्पोजिशन ऑफ टाइट्स की प्रस्तुत गिरजाघर के धन की खर्च का अधिकार देती है, या प्रस्तुत प्रथम अधिकारता 12 चेलों और अधिक करने वाले बिशप्रिक से संकेत है। यह प्रसिद्ध गिरजाघर विभागों और प्राचारों के बचताओं के अनुमति देती है। गिरजाघर विभाग धन का खर्च स्वर्ति दी हुई बताओं के एक रूप में होता है और गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग को अनुमति दी गई है उसके पास सभी अभिलेख और प्रणालियों ताकि पहुंचे और जो आवश्यक है ताकि धन प्रति खर्च और गिरजाघर की संपत्ति को सुरक्षा के निमित्त को प्राप्त रूप से मुलायम किया जाए। गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग अन्य गिरजाघर विभाग और प्रचारक से सुरक्षित है और कर्मचारियों में सम्मिलित है सर्टिफाइड पब्लिक लेखापत्र। जो ऑडिट हुआ है उस पर आधारित गिरजाघर ऑडिटिंग विभाग का ये विचार है कि 2008 वर्ष के सभी सामानों योगदान का प्राप्त हुआ है जो खर्च हुआ और गिरजाघर की संपत्तियों का अभिलिखित किया गया है और उनकी दिमला उचित अकाउंटिंग अभ्यास स्वरती प्राप्त पहुंचता और गिरजाघर नियुक्तों का कार्यों की अनुसार की गई है। Robert W. Cantwell, Managing Director. Robert W. Cantwell.
Brothers and sisters.
भाइयों बहनों, प्रथम अधिकारियों ने दी गई रिपोर्ट दी है जो December 31st, 2008 तक की प्रगति और गतिविधि की संपत्तियों है। Stakes 2,818. Missions 348, districts 622, wards and branches 28,109, total church membership girja ka sadasya 13,508,509, naye bachchon ka abhilekh 1,202, converts baptized 265,595. Number of full-time missionaries 50,492. Four temples were dedicated. Four temples dedicated were 2008. May respect Idaho, courtesy Brazil, Panama City, Panama, Twins Fall, Idaho. One temple, the Mexico City. Mexico City ka temple mandir ko prasthapit kiya gaya hai. Total number of temples in December 31st tak mandir ki kul salekha jo chalu hai 128. मशहूर सदस्य जिनकी मृत्यु पिछले जोसेफ बी विदलिंग, सिस्टर एलिस थॉमस एवंस, एल्डर एल एवंस की विधवा जो 12 एल्डर जे थॉमस एवंस जनरल अथॉरिटी था, एल्डर डगलस हेच स्मिथ 70 के थे, बहन हेरिता बाबरा वॉशबर्न, एल्डर जे बैलेट वॉशबर्न 70 के सदस्य की पत्नी थी और भ्राता डेनियल हेच हर्डलो चर्च कोरिलेशन विभाग के पूर्ण निदेशक थे, चर्च कोरिलेशन विभाग के मुख्य संपादक। अब हम सुनेंगे एम रसल बेनेट और क्विंटन ऑफ द कोरम ऑफ द 12 अपोसल्स के।
हम कभी भ्रम भरे समय में रहते हैं। उस दिन मैंने अपने पोतों से कहा कि मैं अपने सम्मेलन भाषा पर विचार कर रहा हूँ। वो भ्रम में पड़ गए। क्या तुम टेक्स्ट संदेश द्वारा अपने सम्मेलन भाषा को दोगे? उसने पूछा। जबकि कुछ के लिए टेक्स करना आसान होगा, मैं एहसानमंद हूँ कि मौके के लिए कि आज भाषण दे सका, क्योंकि मेरे पास एक संदेश है जिसे मैं महसूस करता हूँ कि आवश्यक है मेरे पोते और मेरे अन्य नाती पोतों के लिए और गिरजाघर के सभी युवकों के लिए। कई वर्ष पहले जब मैं व्यापार में था, मैंने एक बहुमूल्य सबको सीखा क्योंकि मैंने अपने पिता की सलाह को नहीं सुना और स्वर्ग पिता और पवित्र आत्मा को नहीं सुना था। मेरे पिता और मैं गाड़ी वाले व्यापार में थे और फोर्ड मोटर कंपनी उन व्यापारियों की तलाश में थे जो उसकी नई गाड़ियों को बेच सकते थे। फोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने मेरे पिता और मेरे आमंत्रित किया उस प्रदर्शन के लिए जिसमें वो प्रदर्शित कर रहे थे कि वो सोचते थे कि इस शानदार कामयाब उत्पत्त होगा। जब हमने गाड़ियां देखी मेरे पिता जिसके पास 35 वर्ष का अनुभव था इस व्यापार में मुझे चेतावनी दी। फिर भी फोर्ड के बिक्री करने वाले लोग बहुत प्रेरित करने वाले थे और मैंने चुना सोल्ट सिटी शहर के प्रथम और वास्तव में अंतिम एसडो व्यापारी बनने के लिए। अगर तुम नहीं जानते एसडो क्या है अपने दादा से पूछिए। अब इस अनुभव में मैं तुम सभी के लिए एक शक्तिशाली सबक है। जब तुम इच्छापूर्ण सुनना और सिखाना चाहते हो जीवन के कई आत्मपूर्ण शिक्षण उनसे आते हैं जो तुम्हारे पीड़ाओं पैदा होने से पहले थे। अगर तुम इनकी सलाह पर ध्यान दोगे और प्रतिक्रिया दिखलाओगे वो तुम्हें उन चेतावनों की ओर मार्गदर्शन में मदद कर सकते हैं जो तुम्हारे फायदे और आशीर्वाद के लिए होंगे। उस दृश्य की कल्पना करना कठिन है जहां ये काफी महत्वपूर्ण होगा दूसरों के अनुभव पर विचार करना और सीखना। कई नौकरियों के लिए इंटर्नशिप की जरूरत है जिस समय अभिलाषा करने वाले पेशवर अनुभवी पेशवरों के मार्ग अपनाते हैं। रंग रूप जो पेशवर खेलों में भाग लेते हैं वो बहुधा बेंच पर बैठते हैं और अनुभवी खिलाड़ियों को देखकर सीखते हैं। निसंदेह ऐसे समय हैं जब हमारे पास कोई चुनाव नहीं होता है पर खतरों मोल लेते हैं और वो करते हैं जानने के लिए जब जीवन जीते हैं। जब हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रति समस्याएं होती हैं हमें उनकी मदद लेनी चाहिए जिनके पास हमें ज्यादा ज्ञान होता है उस पर जिसका अक्सर मतलब है तुम जवान लोगों से पूछना। आज ये मेरा संदेश और गवाही है मेरे जवान दोस्तों कि तुम्हारे आनंद जीवन के सबसे आवश्यक सवालों के लिए धर्मशास्त्रों और देवदूतों और भविष्यवक्ताओं के शब्दों और गवाहियों में जवाब है। ये वास्तव में वो उनके शब्दों को तुम्हारे लिए और भी बहुमूल्य बनाते हैं क्योंकि वो उनसे आते हैं जो कोई वर्षों से वफादार जीवन बिताने की बात सीखते हैं। एक मशहूर गावत जॉर्ज संत्याना से जुड़ा है। तुमने संभवतः सुना है जो अतीत को याद नहीं कर सकते उसको योग्य है कि दोहराएंगे। वास्तव में तैवे है जो अतीत की याद नहीं करते उनका दुर्भाग्य है कि वो दोहराएंगे उसे। तुम्हें अंतिम दिनों संत बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें धार्मिक होने की जरूरत है। नहीं, ईश्वर के बच्चों के जीवनों में इतिहास के दोहराने वाले नमूने देखना जैसे पुराने नियम में अभिलिखित है। इसी तरह मूवमेंट की पुस्तक में अभिलिखित है कि इस महाद्वीप की प्राचीन सभ्यताएं इसी नमूने को अपनाएं। धार्मिकता के बाद सपनता, उसके बाद सामान आराम, उसके बाद गर्व, उसके बाद पाप और नैतिकता का पतन, जब अंत में लोग अपने ऊपर मुसीबतें लाते जो पर्याप्त होता उनके उन्हें विनम्रता, पश्चाताप और बदलाव और की ओर ले जाने के लिए। छोटे समय में जो नया नियम में है, ऐतिहासिक नमूना फिर से अपने आप को दोहराता है। इस समय लोग मसीहा और उनके देवतों के विरुद्ध हुए और पतन इतना महान था जिससे हम महान धर्म त्याग के नाम से जानते हैं। अब मुझे इस इतिहास के होने वाले धर्म त्याग और आध्यात्मिक अंधकार के पुनः होने वाली अवस्थाओं पर बहुत स्पष्ट होना है। हमारे स्वर्ग पिता अपने सभी बच्चों से प्रेम रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो सभी अपने जीवनों में सुषमाचार के आशीर्वादों को पाए। आध्यात्मिक रोशनी खोया नहीं, क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों को नहीं भूलता है। निश्चय ही ये तब होता है जब उनके बच्चे एक साथ उनकी उपेक्षा करते हैं। इस ऐतिहासिक नमूने का एक सबसे महान सबक है कि हमारे चुनाव दोनों व्यक्तिगत रूप से और संगठित रूप से हमारे और हमारे विशारदक के आध्यात्मिक परिणाम होते हैं। प्रत्येक समय में ईश्वर की स्नेही इच्छा की अपने बच्चों को आशीर्वाद दे। प्रकट है जीवित भविष्यवक्ताओं द्वारा पृथ्वी पर सुषमाचार सच्चाई की चमत्कारी पुनः शपथ में 1800 की शुरुआत में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ द्वारा सुषमाचार की पुनः सपना सबसे हाल का उदाहरण है। इसी तरह की पूर्ति शुरू में हुई थी नोआ, अब्राहम, मोसेस और निसदे खुद प्रभु यीशु मसीह द्वारा। जब से अंतिम दिनों से संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर का स्थापना 179 वर्ष पहले औपचारिक रूप से हुई थी, किसी नाम से विशेष है। अभिलिखित इतिहास में कभी भी इस तरह की उल्लेखनीय प्रगति की अवस्था नहीं थी। इन प्रगतियों से मदद मिली है दुनिया भर में सुसमाचार को बढ़ाने में। हम उस समय में रहते हैं जब समाज के स्वीकार किए हुए स्तर के अच्छाइयों और लोक कुलीनता को वहां तक धकेले जाती है जहां कोई सीमा नहीं है। समाज के कुछ ढल आमतौर पर उनके प्रति अविश्वसनीय हो जो धार्मिक विश्वास के अनुसार जीना चुनता है। क्या इनमें से कोई परिचित है? मेरे जीवन भाइयों और बहनों, क्या तुम ऐतिहासिक नमूने को फिर से आते देख सकते हो? धार्मिकता का नमूना जिसके बाद सम्पन्नता आती है, जिसके बाद सामनाओं का आराम, जिसके बाद गर्व, जिसके बाद पाप और नैतिक का पतन। वही नमूना को हमने बार बार देखा है पुराने और नए नियम और मोर्मन की पुस्तक के पेनों में। और भी आवश्यक अतीत के सबकों का क्या असर तुम्हारे व्यक्तिगत चुनाव पर पड़ेगा जिन्हें तुम अभी करते हो और बाकी के तुम्हारे जीवन में? प्रभु की आवाज स्पष्ट और सही है। वो तुम्हें जानते हैं, वो तुमसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, पर तुम्हारी ईश्वर की दी हुई चुने की शक्ति के अनुसार चुनाव तुम्हारा है। तुम प्रत्येक को अपने आप के लिए निर्णय करना, और अगर तुम अतीत की उपेक्षा करोगे और उन पिदभारी गलतियों और दुखद झमेलों का कष्ट उठाओगे जो पहले की पीढ़ियों के साथ घटित हुई, और खुद के लिए बुरे चुनाव के बर्बाद करवाओगे का अनुभव कर सकोगे, कितना अच्छा तुम्हारा जीवन होगा अगर तुम मसीह के वफादार चेले जैसे हेलमन के पुत्र मोरोनाई जोसेफ स्मिथ और वफादार के अच्छे उदाहरण को सीखोगे। अपने पूरे दिल से मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम बुद्धिमान रहोगे, कि अतीत के सबकों को सीख सको। तुम्हें लेमन या लेमोल की तरह समय नहीं बिताना है ताकि तुम जान सको कि नेफा या जैकब होना उचित है। तुम्हें केन या गेडियंटन के मार्ग को नहीं अपनाना है ताकि तुम जान सको कि पाप कभी खुशियाँ नहीं था, और तुम्हें अपने समाज को सोडम या गोमोरा नहीं बनाना का मौका देना है ताकि तुम समझ सको वो परिवार के लिए अच्छी जगह नहीं है। अतीत के सबकों को सीखने से तुम्हें मौका मिलता है कि तुम निर्भीकता से रोशनी में चल सको, अंधकार में लड़खड़ाने के खतरे के बिना। इस तरह वो होना चाहिए, ये ईश्वर की योजना है। पिता और माता, दादा और दादी, अपने बच्चों को सिखलाओ, बच्चे उनसे सीखें, और फिर उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव और मौकों द्वारा एक अधिक धार्मिक पीढ़ी बन सके। अतीत से सबकों को सीखने से तुम्हें मौका मिलता है कि एक व्यक्तिगत गवाही बनने के लिए उस आज्ञाकारी विश्वास और पवित्र आत्मा के मजबूत आधार पर। छापे हुए पेनों से घटनों के नाम और तारीख और सिलसिले सीखने से तुम्हें मदद नहीं मिलेगा। गवाही द्वारा पोषित और विश्वास से सूचित है, और वो लौटा है जैसे वो हमेशा लौटा है, तुम्हारे अपने व्यक्तिगत विश्वास और गवाही के लिए। वही भिन्नता लाता है मेरे जीवन भाई और बहनों, उसी तरह तुम जानते हो, उसी तरह तुम गलतियों से बचते हो और अपनी आध्यात्मिकता को अगले स्तर तक ले जाते हो। अगर तुम पवित्र आत्मा की को सुनोगे, तुम्हारे जीवन आगे बढ़ेगा, और उस तरह की गवाही तुम कैसे प्राप्त करते हो, ठीक उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही रहेगी। इंटरनेट में ढूंढकर तुम गवाही को नहीं पा सकते हो, तुम विश्वास को टेक्स्ट नहीं कर सकते हो। ये अतीत का एक महान सबक है। तुम एक मजबूत जीवन बदलने वाली गवाही को प्राप्त करते हो आज, उसी तरह जैसा हमेशा हुआ था। प्रक्रिया बदली नहीं है, वो इच्छा, अध्ययन, प्रार्थना, ओबीडियंस और सेवा द्वारा आती है। इसी कारण भविष्यवक्ताओं और देवत्वों के शिक्षण प्राचीन और वर्तमान आज भी तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे वो पहले था, कि तुम अतीत के महान और आनंद सबकों को सीखने द्वारा भविष्य में आनंद और खुशियां पा सको। ये मेरा प्रार्थना है आप सभी के लिए, मेरे नाती पोतों के लिए और आप सभी के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
this mortal life.
ये जीवन एक कठिन यात्रा है, पर अंत में महान है. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कहा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. संसार में तुम्हें क्लाश होता है, परंतु दहास बनो, मैंने संसार को जीत लिया है. मेरे उद्देश्य इस शाम है दुगना है. प्रथम विश्वास के प्रति कुछ रुकावटों के संबोधित करूंगे और दूसरों वर्णन करो कैसे हमारे पिता की योजना उनके सभी बच्चों के लिए प्राप्त है. पिछले दो वर्षों में यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया भर में हमारे विश्वास की बहुत चर्चा हो रही है. ये नया नहीं है, ये गिरजाघर के इतिहास में समय समय पर हुआ है. 1869 में चार्ल्स डिकन्स अंग्रेजी उपवास कर अमेजन नामक जहाज में गया जो न्यूयॉर्क जा रहा था. उसका उपदेश था अंतिम दिनों के संतों पर रिपोर्ट करना और पर जो अमेरिका में पहुंचना जा रहे थे गिरजाघर बनाने के लिए. वहां हजार निवृत्तों को चले गए थे और ब्रिटिश में उनके विश्वास करके में लिख गए थे. जो लिखा गया था उसमें अधिक प्रतुल था. आए उनके जहाज में गया डिकन्स ने लिया उनके विरोध गवाही देने अगर वो उसके लिए भागे थे. जैसे मैंने पूरी तरह विश्वास करता था कि वे थे, मेरे आश्चर्य के लिए वो भागे नहीं थे. डिकन्स बहुत प्रभावित हुआ और अंग्रेजी निमंत्रणों को वर्णन किया. उनके कई मेजा इंग्लैंड के सबसे अच्छे और उचित. गिरजाघर के दो अंतर स्पष्ट कहान वाले सूचन है. एक और धार्मिक संदेश है जिसकी तरह वो अपने जीवन जीते हैं और वे अमर अंकुल जो अंतिम दिनों के संतों को जानते हैं और उनके भी वही विचार था जैसे 150 साल पहले चार्ल्स डिकन्स का था. पुनस्थापित के उन्नत करने वाले धर्मशास्त्र के कारण संदेश समाचार में हस्तित और गिरजाघर में आनंद और पाते हैं. जब सदस्य शिक्षों को नहीं अपनाते वो उनके लिए रुकावटों को हो सकते हैं और गिरजाघर के सदस्य नहीं होते हैं. धार्मिक संदेश पर अनुकूल सूचनाओं में विपरीत गिरजाघर और उसके धर्मदान के वर्णन बुरा जाते हैं, अन्य और कठोर होते हैं. ये विचार जो हमारे धार्मिकता और प्रति है वो आश्चर्य के रूप में नहीं आते हैं. डॉक्टर एंड कवेनेंट्स में कहते हैं There'll be some, the lift of the voice and curse God. And some, and turn their hearts from me because of the precepts. लंदन में बस के विज्ञापन सख्त विपरीत करते हुए जो सचमुच हुआ अंत पर धर्म के संबंधित है. लास्ट पोस्टर्स बसों में डाल दिया. जो लिखा हुआ दिस प्रॉब्ली ने गॉड नाउ स्टॉप वरिंग एंड एंजॉय योर लाइफ. ईसाइयों ने कहा प्रभु जरूर है. आशीर्वाद अविश्वासी ये शिकार जल्दी नहीं करते और चमत्कारों को जो पुराना और नया नियम में हुआ है और उद्धारकर्ता का जानते हैं. भौष्विकता जोश स्मिथ जो ईश्वर जो पिता है और यीशु मसीह दिखाया दिया थे वे उस स्वर्गीय योजना की संभवता और नहीं मानते जिससे एक ईश्वर द्वारा होती है. उसके पास विश्वास नहीं है. लोगों से लिए मेरा मुख्य चिंता ये है कि अपने खुशी से धार्मिक विश्वास पर विचार करते हैं पर धार्मिक द्वारा नहीं है, भ्रम में पड़ गए हैं. बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन वो उनको बताया गया कि कोई अधिक ईश्वरीय वचन कोई धर्मस्था सर कोई घोषणा नहीं होंगे. मैं जोर डालूंगा कि ये विश्वास धर्मस्था नहीं है, पर ये कुछ के लिए रुकावट है। हाल की एक पुस्तक जिसमें बिक्री अच्छी तरह हुई थी, लेखक अपने सिद्धांत के समता के इस्तेमाल के रुचिकार वश के रूप में करता है कि कई शांतियों के जब ऑस्ट्रेलिया की खोज हो तब दूसरे रंग के हंस पा गए। लेखक इस सम्मानत के इस्तेमाल करता है कि ताकि घटनाओं को समझना कि वो वास्तव में घटी है, पर उसकी प्रस्ताव नहीं गई गई है। दस जब मैंने इस समता के बारे में विचार किया, मैंने सीखा कि वो लोगों के गिरजाघर भी गंभीरता से चिंतित हैं। इसलिए जोसेफ स्मिथ को विश्व के रूप में शेवर की बाहरी रुकावट उपता हुई, फिर भी जब उसने प्रार्थना की, वो वर्णन करता है, मैंने एक गवाही प्राप्त की कि वास्तव में पृथ्वी पर सुसमाचार की प्रस्थापित हुई है। जोसेफ स्मिथ वास्तव में ईश्वर के भविष्यवक्ता थे। इन कई लोगों के लिए जो धार्मिक विश्वास पर अपने खुशी से विचार करते हैं, एक विषय वैश्विक समस्या उत्पन्न करता है। उन्हें कठिनाई होती है कि उचित धर्म स्थान पर समझौता करना कि हमारे पास स्वर्ग में स्नेह पिता है और उचित धर्मशास्त्रों की मानो हमेशा के लिए नए जाएंगे। विषय में पढ़ दादा फिनिस वॉलकॉक कुक के साथ था। उसका जन्म 1820 में कनेटिकट में हुआ था। अपने डायरी में उन्होंने लिखा हुआ प्रभु के साथ वादा किया कि वे उनकी सेवा करेंगे और वो उचित मार पाएंगे, और वे उससे पूछा गवाही दी गिरजाघर का सदस्य बने एक ईसा। उसका जवाब था कि बदलाव नहीं सकता कि किसका सदस्य बना। कभी कभी उन्होंने मुझे मैं गलती पर, क्योंकि मैंने मानव की परिवार के लिए और भी स्वतंत्रता उधार चाहता है, मैं विश्वास नहीं करता सकता था कि प्रभु ने मानव के लिए एक भाग उपति की जिन्हें बच्चों के थी। इस धर्मशास्त्र के कारण उसने मौका दिया कि उसके नाम को एक प्रोटेस्टेंट धर्म की अभिलेख से निकाल दिया जाए, जब एलडीएस प्रचारक ने उसे 1844 में उधारा। फिनिस फेथ की स्नेह दिया और खुशबुओं की उसकी योजना पर सामने रखने गए महिलाओं में एंग्लिकन गिरजाघर के नेता और विधाओं फ्रेडरिक फेरर द लाइफ ऑफ क्राइस्ट के लेखक ने वेस्टमिंस्टर एबी के प्रवचनों में शोक व्यक्त किया कि प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों के सामान्य शिक्षा जो नरक प्रदान थे। ग्रीक से किंग्स जेम्स अनुवाद के अर्ग धर्मशास्त्र में लाते समय फरार ने यह भी ध्यान दिया कि धर्मशास्त्र भार में स्वर्ग के स्नेह पिता के अधिक प्रदर्शन है और अधिक प्रमाण है कि नरक और नरक दंड के प्रसन्न जिनके इस्तेमाल अंग्रेज में किया गया। लॉर्ड टेनिसन ने अपनी कविता में इन मेमोरियम में अपनी अर्क भावनाओं अभिव्यक्त किया। उस पर ध्यान देने के बाद हम विश्वास करते हैं कि किसी तरह पाप पर अच्छाई की जीत होगी। वो आगे बढ़ेगा, सब कुछ उद्देश्य कारण करेंगे कि एक जीवन भी बर्बाद नहीं होगा, ये मैं की तरह अहंकार में पाऊंगा। जिस समय जोसेफ स्मिथ ने ईश्वरीय वचन प्राप्त किया था, गिरजाघर को आयोजित किया, वो गिरजाघरों के सिमलन और गारतों के प्रचारित कई मानव के लिए उधार नहीं लेंगे। 15 भाई दर्शकों ने प्रकट किया कि जोसेफ स्मिथ ने हमारे लिए वो उधार की योजना प्रकट किया है, सभी मानव के लिए लहू के जिनमें सम्मिलित हो वही की उम्र से पहले मर जाते हैं और जिन्हें पास समझ नहीं होती। मौत के समय धार्मिक अंतिम एक अस्तव दशा में रहती है, जैसे स्वर्ग कहता है। एल्मा छोटा हमारा सिखलाता है कि स्वर्ग एक विक्राम का समय है, एक शांति का समय जहां धार्मिक लोग अपने सभी कष्टों और चिंतों और दुखों और चुटकियों पाएंगे। जो धार्मिक अंतिम नहीं होती हैं, वो आत्मा के करेंगे और मैं रहती हूँ। कभी कभी उस नरक कहा जाता है, वो भयानक अंधकार जगह होती है, इसके कृपया वही पाएंगे। अपवाद उनके लिए शैतान और उनके फरिश्तों की तरह अपनी इच्छा के ईश्वर का विरोध करते हैं। पुरजीवन के समय आत्मा का कार्य का नया रक अपनी बंती को आत्माओं को मुक्त करेगा। यीशु इस दुनिया में आए दुनिया के लिए दुनिया के पापों को सहें और लिए और दुनिया को पवित्र करने के लिए, और उसने सभी अधर्मताओं को साफ करने के लिया। उद्धारकर्ता ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुल रहना स्थान है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जाता हूँ। एक स्पष्ट संसार प्रदान किया गया मौजस के पुस्तक में, जहाँ प्रभु कहता है कि कार्य उनके लिए मानव के लिए समर्पण नहीं है। जाने जो कुछ उद्धारकर्ता ने मानववर्ती के लिए सहा, ये आश्चर्य है कि वो जोसेफ के आदेश देंगे और उनमें किसी का सदस्य ना होंगे, क्योंकि वो सभी गलत थे। उद्धारकर्ता ने उद्धार की योजना के सम्मान में अपने सच्चे धर्मशास्त्र में बांध में प्रदान किया और बनने वाली सिद्धांत किया, पर अन्य विश्वासों से अपनी सिद्धांत संबंधी भिन्नताओं की मानदों के बतूत हमारा विचार की ये गिरजाघर के प्रति आलोचना से बके। वॉशिंगटन पोस्ट के एक संपादन के नाइजेरियन में हमारे गिरजाघर की एक सभा में भाग लिया। संवाददाताओं ने एक संदेश के भावुकता की ओर अपने धर्म परिवर्तन के बारे में बताया। उसने कहा कि वो सरान के एक बस के खुदा का एलडीएस गिरजा इमारत में गया। हमारे नेताओं ने एक रूप से हमें सलाह दी है, उनका सम्मान करें और उनके प्रति आभारी रहें जो हमारे विश्वास के नहीं है। बहुत अधिक जरूरत है शिक्षा और सम्मान की उनकी प्रति जिन्हें विश्वास और धर्म बिना है। ये बारंबार रूप से व्यक्त है कि हम अपने विश्वास के सदस्य के प्रति स्नेह और दयालु प्रयाण करें। ये विशेष सच है कि हमारे अपने परिवारों के सदस्य के लिए हमारे कर्तव्य है प्रेम रखना और सिखलाना कि हार नहीं मानना। प्रभु ने उद्धार को सभी मानव के लिए मुक्त रखा है, पर उन्होंने आज्ञा दी है कि वो लोगों के अपने पापों को पश्चाताप करने का अनुरोध करेगा। हमारे दिलों की इच्छा निश्चित ना ही सिर्फ उद्धार और अमृत प्राप्त करना है, पर आनंद जीवन प्राप्त करने हैं। पिता जो स्वर्ग में है और हमारे उद्धारकर्ता के साथ स्वर्ग राज्य में अपने परिवार के साथ सुसमाचार का कानूनों और धर्म पर स्वर्ग धर्म से सिर्फ हम आनंद जीवन पे प्राप्त कर सकते हैं। वो शुरुआत के नम्रता और अमेज़न नमक के जगह मिला था। उन्हें पांच गवाही दी कि ईश्वरी वचन स्वर्ग से आता है और भाषवक्ता और देवताओं से प्रवृत्ति पार है। उनके पास यीशु मसीह के पुनस्थापित सुसमाचार पर विश्वास था। वे उस बढ़िया मंजिल को समझ गए थे जो भविष्य में था। वे इस कहानी यात्रा के लिए भावित नहीं थे जो वे कर रहे हैं, और उनकी अंतिम मंजिल वास्तव में सॉल्ट लेक वैली नहीं थी। उनकी सच्चाई मंजिल इस जीवन के वफादारी के साथ सह के बाद स्वर्ग देश जिस स्वर्ग राज्य में था। इसीलिए अंतिम दिनों के संतों हमेशा गाते हैं, आओ आओ तुम संत विश्वास और पश्चाताप के साथ। और अगर हमारी मौत हो यात्रा से पहले खुशहाल है हम, सब ठीक है, हम फिर मानव और दुख मुक्त है, धार्मिक के साथ हम रहेंगे। एक स्नेह पिता ने एक विस्तृत और दयालु योजना प्रदान किया है अपने बच्चों के लिए, जो जीवित को बचाती है, मृत की मुक्ति देती है, बुरे लोगों को बचाते हैं और उनके प्रशंसा करती है जो प्रस्ताव करते हैं। हल्की हमारी यात्रा कठिन रहेगी, मंजिल वास्तव में सिद्धांत रहेगा। मैं उधारकर्ता योजना की अनंत हूँ जो प्राप्त है हमारे स्वर्ग के पिता के हमारे साथ। मैं अपनी अभी भारी करता हूँ कि मसीह के प्रायश्चित को स्पष्ट करने के लिए मैं उनकी गवाही देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमेन।
Thank you, brother.
धन्यवाद भाई। गायन मंडली अब सभा गाएंगे Let Us All Press On। गाने के संपत्ति पर एल्डर केविन डब्ल्यू पेसन एंड रेफेल इल्पिनो जो 70 के हैं हमें संबंध करेंगे। उनके भाषण के बाद हमें एल्डर रिचर्ड जिस्कॉट जो 12 चेलों की प्रसिद्ध है हमें उनसे सुनेंगे।
This is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite
मैं होली गोस्ट को आमंत्रित करता हूँ, जैसे हम गॉस्पेल के सिद्धांत की बात करें। सिद्धांत है ईसा मसीह में विश्वास। मैं धन्यवाद देता हूँ विश्वास के सच्चे उदाहरणों को जो मेरी जिंदगी में हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने माता पिता को, प्रीस्टहुड लीडर्स को, अपने परिवार को, मिशनरीज को, अपने बच्चों को और अपनी प्रिय पत्नी को। मैं ईसा मसीह में और अधिक विश्वास करने का उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं जीवन में विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता अभी है। हमें आदेश दिया गया है कि माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों को ईसा मसीह जो भगवान के पुत्र हैं में विश्वास को समझाना चाहिए। ये विश्वास को एक गॉस्पल का सिद्धांत के रूप में देखने से अधिक है। विश्वास का मतलब है किसी चीज या किसी पर भरोसा होना। सच्चा विश्वास ईसा मसीह में होना चाहिए। विश्वास होना कर्म करना और शक्ति का सिद्धांत है। इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, केवल विश्वास करना नहीं। विश्वास करना भगवान का तोहफा है जो हमें होली गोस्त द्वारा मिलता है। इसके लिए आवश्यक है सही तरह से समझना ईसा मसीह को, उनके दिव्य आचरण को, उनकी सीखों को, अटोनमेंट, रेजरेक्शन और प्रीस्टहुड को, इन सिद्धांतों का पालन करने से हमें उनमें भरोसा मिलेगा. उनके अलावा किसी और चीज पर हमें पूरा भरोसा नहीं हो सकता. कोई भी दूसरा आधार जीवन में अधिक शांति, खुशी नहीं मिल सकती. मुश्किल समय में विश्वास करना सच में एक आत्मिक तोहफा होता है. हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, खेल दे सकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें ईसा मसीह में विश्वास नहीं दिया, तो फिर हमने उन्हें कम दिया है. हमारा विश्वास बढ़ता है. हमारे क्या हमारे बच्चे जानते हैं कि हम जानते हैं? क्या वो तुम्हारे विश्वास को महसूस कर सकते हैं? ज्यादा विश्वास करना मिलता है जब हम ईसा मसीह के गॉस्पल का पालन करते हैं. एल्डर ब्रूस आर मैकॉन्की ने सिखाया, विश्वास भगवान का तोहफा है. जब भी धार्मिकता होती है, जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं उदाहरण या उपदेश द्वारा कि वे भगवान के आदेशों का पालन करें में अनियमित हों, तो हम उन्हें इस आत्मिक तोहफे को पाने से रोकते हैं. विश्वास करने के लिए आवश्यक है पूर्णता पालन करना, छोटी और साधारण चीजों में भी. अच्छा करना, इच्छा करना विश्वास करने के छोटा भाग है, लेकिन उससे उत्पन्न होता है दिव्य सच्चाई का अनुभव करते हैं. होली गोस्ट का प्रभाव, मसीह की रोशनी जो हर व्यक्ति में होती है, उसका पालन करने से केमिकल रिएक्शन की तरह आत्मिक पदार्थ उत्पन्न होता है. दिल बदलाव जानने की इच्छा, आशा विकसित होती है जैसे जैसे विश्वास के भाग जुड़ते हैं. सच्चे सिद्धांत का पालन करने के लिए हमारी साधारण कोशिशें, लेकिन विश्वास जो शक्ति है सिद्धांत का बढ़ता है जब हम आज्ञाकारी बनते हैं. व्यक्तिगत धार्मिकता एक चुनाव है. विश्वास करना भगवान का तोहफा है. जिसके पास ये होगा उसे अत्यधिक आत्मिक शक्ति मिलेगी. विश्वास का एक गुण विकसित होता है जैसे हम अपने पूरे दिल, मन और शक्ति का केंद्रित करते हैं. ये एक अच्छे मिशनरी, सद्गुणी लड़की, धार्मिक माता और पिता, नाना नानी, दादा दादी की आंखों में दिखाई देता और महसूस होता है. ये दिखलाता है जीवन में, हर देश, कल्चर में, हर भाषा बोलने वाले में और हर जिंदगी की स्थिति में. ये विश्वास की आंख है, जिस तरह प्रॉफेट आलमा ने बताया. केंद्रित होने का गुण, हरदम सच्चे सिद्धांतों का पालन करना और हमेशा सच सिद्धांतों का पालन करना, जबकि अत्यधिक अंधकार हो. विश्वास का ये गुण अत्यधिक शक्तिशाली होता है. फिर भी हर एक कामों में विरोध स्वाभाविक है. प्रभु परमेश्वर ने मानव को कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए वो बिना दो में से एक के द्वारा प्रभावित हुए कर्म कर नहीं सकता, और इसलिए वो विश्वास के साथ है. ये प्रभावों को हो सकते हैं कि विश्वास की जगह संदेह और अविश्वास को चुना है. जब यीशु माउंट के ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर से श्रेष्ठ आध्यात्मिक अनुभव से लौटे, उनके पास एक अनंत पिता के जिसके पुत्र को मदद की जरूरत थी. पिता ने अनुरोध किया, यदि तो विश्वास और भय साथ नहीं रह सकते, एक को दूसरे को रास्ता देना होगा। साधारण वास्तविकता यह है कि हम सभी को लगातार विश्वास विकसित करना है और अविश्वास के बर्बाद करने वाले स्रोत पर काबू करना है। तुम शायद अपने आप से ये सवाल करो, क्या मेरे पास विश्वास है कि मुझे विश्वास की कमी है? अगर तुम्हारा विश्वास हमारे संदेह और अविश्वास से अधिक है, जवाब संभवतः हाँ होगा या फिर नहीं। हमारे पास चुनाव है, हम वो प्राप्त करें जिस पर तुम एक रूप ढंग से केंद्रित करोगे। कुछ सत्ताएं से सीधे प्रभाव के परिणाम हैं। ये शक्तियां व्यक्तिगत झुकावों, विचारों और आदतों से आती हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। प्रथम संदेह है, संदेह समाचार सुसमाचार का सिद्धांत नहीं है। संदेह एक बुरी भावना है जो भय से संभव होती है। वो हमारे ईश्वर के बच्चों होने की हमारी दिव्य पहचान से एक रूप नहीं है। संदेह हमें उत्साह भाग की ले जाती है। बहुत बुरा उत्साह भांग कम प्रत्याशा, कम कोशिश, कमजोर इच्छा और पवित्र आत्मा को महसूस करने से होती है। उत्साह भाग और निराशा विश्वास का विरोध है। ध्यान भंग से ध्यान को उस करता है जो जरूरी है ताकि विश्वास की आंख हो सके। उत्साह भंग और ध्यान करना ध्यान भंग लगान की कमी की नेतृत्व करता है। निराशा जीवन का अनिवार्य भाग है, पर उसे संदेह, उत्साह भंग, ध्यान भंग या लगन की कमी की नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। अगर लौटाया नहीं जाए, ये मार्ग अंत में उल्लंघन की नेतृत्व कर सकता है। अविश्वास धर्मशास्त्र संबंधी अवस्था है, जब दिल को कठोर करण के लिए चुना जाता है, वो सुना होना है। ये चाहे बर्बाद करने वाली शक्तियां संदेह, उत्साह भंग, ध्यान भंग, लगन की कमी, उल्लंघन और विश्वास सभी हमारे विश्वास को बर्बाद करते हैं। चुनौती समय के अधिक शक्ति की जरूरत है। अगर तुम मुझे विश्वास करोगे, तब मेरे नियमित जो आवश्यक होगा तुम उसे कर सकोगे। मैं विनम्रता से कहता हूँ कि भगवान हमारे पिता, स्वर्गीय पिता जीते हैं और अपने बच्चों को प्यार करते हैं। ईसा मसीह हमारे सेवियर और रिडीमर हैं, वो जीते हैं और हमें इस चर्च को लीड करते हैं प्रेसिडेंट मॉन्सन द्वारा, जो प्रॉफिट हैं। और क्योंकि वे जीते हैं, हमेशा आशा है। हमारे विश्वास के घर में डर करने की जरूरत नहीं है। विश्वास के जीवन को जियो, ईसा मसीह के पवित्र नाम में, आमेन।
One Sunday morning, some years ago,
कुछ साल पहले मुझे ब्रदर उमर अलमारिस का फोन आया। वो उस समय बिशपरिक में मेरे सलाहकार थे। उनके 3 साल की बच्ची का एक दुर्घटना में देहांत हुआ था। उन्होंने उस दुर्घटना का ये वर्णन दिया। जैसे हम वेनेजुएला के एक खूबसूरत समुद्र तट पर पहुंचे, हमारे बच्चों ने समुद्र तट के पास के एक छोटी नदी में खेलने की जिद की। हमने उन्हें जाने दिया। उसके बाद हम गाड़ी में कुछ सामान निकालने लगे। दो मिनट बाद हमें नजर आया कि हमारे बच्चे किनारे से काफी दूर पहुंचे थे। जैसे हम उन्हें पास बुलाने गए, हमने देखा कि हमारी 3 साल की बच्ची उनके साथ नहीं थी। हमने उसे ढूंढने की उग्रता से कोशिश की, पर वो वहाँ पास में बहती नजर आई जहाँ हमारे बच्चे खेल रहे थे। हमने उसे पानी से तुरंत निकाला। पास के कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, पर वो कुछ नहीं कर पाए। हमारी छोटी बेटी डूब चुकी थी। डूबने के बाद के क्षण बहुत ही मुश्किल थे। हम व्यथा से भरे थे। हमारी सबसे छोटी बेटी गुजर गई थी। कुछ ही क्षणों में वो भाव पीड़ा में बदल गया और हमें लगने लगा कि हम वो सह नहीं पाएंगे। पर उस उलझन और गड़बड़ के बीच ही हमारे मन में विचार आया कि हमारे बच्चे मंदिर में की हुई प्रतिज्ञा में पैदा हुए थे और उस प्रतिज्ञा द्वारा हमारी बेटी हमारी थी अनंत काल तक। ये कितने धन्य हैं हम। हम ईसा मसीह के गिरजे के सदस्य हैं और हमें पवित्र मंदिर की विधियां मिली हैं। अब हमें लगता है कि हम और भी निश्चय के साथ अंत तक प्रभु की ओर भक्ति जताएंगे, क्योंकि हमें मंदिर में दिए हुए आशीर्वादों को पाने के लायक बनना है, ताकि हम अपनी बेटी को फिर देख पाएं। हम कभी कभी शोक मनाते हैं, पर उन जैसे नहीं जो निराश हैं। ये भक्ति भरा परिवार समझ पाया कि जब जीवन में पीड़ा आती है, दिलासे का एक ही सही स्रोत है, वो ईश्वर है। शांति मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, मैं वो दुनिया की तरह नहीं देता। दिल में दुख मत रखना, घबराना भी नहीं। अल्बर्ट परिवार के इस संकट के का सामना करने के कई साल बाद मैंने एक और परिवार का संकट का सामना करते देखा। क्यूएस परिवार के कई सदस्य का एक भयानक गाड़ी की दुर्घटना में मारे गए। इब्राहिम क्वेरो भाई ने अपने माता पिता, दो बहनें, बहनोई और भतीजी को उस दुर्घटना में खोया। क्वेरो भाई ने प्रशंसापूर्वक मनोवृत्ति जताई जब उन्होंने ये कहा, ये वक्त था ईश्वर की ओर वफादारी जताने का और ये मानने का कि हम उन पर निर्भर हैं, कि उनकी मर्जी अनुसार सब होता है। मैंने अपने भाइयों से बात की और उन्हें धैर्य दिया। प्रधान किम्बल की ये व्याख्या समझाई जो उन्होंने कई साल पहले सिखाई थी, मौत में कोई शोक नहीं है, सिर्फ पाप में शोक है। महत्व मरने के तरीके पर नहीं, पर जीने के तरीके पर है। जोब ने इन लफ्जों से दिल भराया। जोब के इन लफ्जों में दिल भर आया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने वापस लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। और फिर ईसा के ये शब्द, मैं पुनर्जीवन हूँ और जीवन भी, जो मुझ में विश्वास रखेगा वो यदि मर भी जाए फिर भी जाएगा। ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही पवित्र अनुभव था। प्रभु की मौजूदगी की इस कठिन परिस्थिति के स्वीकार करने से, इन दोनों अनुभवों में जो इतने अच्छे परिवारों ने सहे, सुसमाचार की रोशनी ने उनको दुख और दर्द को हटाया और उन्हें शांति और दिलासा से भर दिया और आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा। इन परिवारों का दर्द की तुलना प्रभु के गेतसेमने में सही पीड़ा से नहीं की जा सकती, पर उस दर्द से मुझे प्रभु की पीड़ा समझने में सहायता मिलती है। ऐसी कोई भी दुर्बलता, कष्ट या पीड़ा नहीं है जो ईसा ने गेतसेमने में नहीं सही। प्रभु ने जोसेफ स्मिथ के डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट में यह प्रकट किया, जिस पीड़ा से मुझे ईश्वर को भी, जो सबसे श्रेष्ठ है, को दर्द से कांपना पड़ा और हर रोमकूप से लहू बहाना पड़ा और तन मन से पीड़ित होना पड़ा, इतना कि वो कड़वा प्याला पीने से मैं हिचकिचाया, फिर भी गौरव पिता को मिले, मैंने वो पी लिया और मेरी इंसान के बच्चों के ओर की तैयारी पूरी की। पैगंबर जोसेफ स्मिथ, जो जीवन के तूफानों से परिचित थे, ने अपने जीवन के सबसे कठिन मौके में की व्यथा में ये पूछा, हे ईश्वर, आप कहाँ हो? आपके छुपने का मंडप कहाँ है? फिर जैसे उन्होंने आवाज उठाई, प्रभु ने उन्हें ये तसल्ली दी, मेरे बेटे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी विपत्ति और कष्ट कुछ ही क्षण है, फिर अगर तुम उसे सही तरह से सह लोगे, ईश्वर तुम्हें ऊपर उन्नत करेंगे, तुम शत्रुओं को पराजित करोगे। प्रधान हॉवर्ड डब्ल्यू हंटर ने कहा, अगर हम जीवन ईसा मसीह और उसे और उनके पुनर्स्थापित सुसमाचार पर केंद्रित रखेंगे, कुछ भी हमेशा के लिए बुरा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर हमारा जीवन उद्धारकर्ता और उनकी शिक्षा पर केंद्रित नहीं है, तो कोई भी सफलता कायम नहीं होती। उद्धारकर्ता ने कहा, इसलिए जो भी मेरी ये बातें सुनता है और करता भी है, उसे मैं एक अकलमंद आदमी के समान समझूंगा, जिसने घर पत्थर पर बनाया और बारिश गिरी और भाड़ आई और तूफान उस घर पर टूट पड़े, पर वो घर गिरा नहीं, क्योंकि वो पत्थर पर स्थापित था। और हर कोई जो मेरी ये बातें सुनता है पर करता नहीं, उसे मैं एक मूर्ख आदमी को के समान समझूंगा, जिसने घर रेती पर बनाया और बारिश गिरी और बाढ़ आई और तूफान आए और उस पर टूट पड़े और वो घर गिरा, बड़ी जोर से गिरा। ये दिलचस्प बात है कि जो बारिश गिरी, जो बाढ़ आई, जो तूफान आए, दोनों घर पर टूट पड़े। इसका मतलब है हमारे सुसमाचार के तत्व जिनमें से हम पीड़ा से बचते नहीं, पर हम उस पीड़ा का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। मैं गवाही देता हूँ कि ईसा ही मसीह है, हमारे ऋण चुकाने वाले मुक्तिदाता। वो इस गिरजे के का निर्देशन उनके जीवित संदेशता प्रधान मॉनसन द्वारा करते हैं। अगर हम मुक्तिदाता के तत्व अनुसार जिएंगे, हम निश्चित वो शांति और दिलासा मिलेगा जो सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं। मैं इन बातों की गवाही देता हूँ ईसा मसीह के नाम से, आमेन।
अंतिम दिनों के संतान का यीशु मसीह का गिरजाघर का प्रत्येक सदस्य को उस समय में रहने जब प्रभु ने आपने भविष्य वक्ताओं को प्रेरित किया कि पवित्र मंदिरों तक वो पहुंच सकते हो। सावधान योजना और कुछ त्याग के साथ गिरजाघर के कई सदस्य आपने और आपने पूर्वजों के लिए मंदिर के तर्व विधियों के प्राप्त कर सकते हैं, मंदिर के बाधे द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेरे तुम्हारे लिए के प्यार के कारण दिल से बात करूंगा। कई बार देखा लोगों ने त्याग किए ताकि दूर के मंदिर जा सकें, पर जब मंदिर करीब होता है जाने के लिए थोड़ा समय लगता है, कई नियमित रूप से नहीं जाते हैं। मेरे पास एक सुझाव है, जब एक मंदिर करीब होता है छोटी चीजें तुम्हारे मंदिर जाने की बाधा पहुंचा सकती है। अपनी परिस्थिति अनुसार विशिष्ट लक्ष्य तय कीजिए कि मंदिर में तुम कब जा सकते हो और कब जाओगे। ये नमूना जिम्मा लेता है कि मंदिर के करीब रहने वालों का वो आशीर्वाद मिलेगा जो मंदिर के दूर रहकर भी मंदिर जाने वाले को मिलते हैं। चौदह वर्ष पहले मैंने निर्णय किया कि हफ्ता में एक बार मैं मंदिर जाऊं और एक धर्म विधि को पूर्ति करूं। जब मैं यात्रा करता हूं मैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता हूं। अगर यात्रा के बाद पूर्ति करता हूं ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। उस संकल्प का कारण मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आई। मैं मंदिर में उपलब्ध धर्म विधियों में भाग लेने के लिए प्रयत्न करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना लक्ष्य स्थापित करो कि कब कब तुम मंदिर में उपलब्ध धर्म विधियों के इस्तेमाल कर सकते हो। मंदिर के धर्म विधियों में भाग लेने से भी आवश्यक और क्या है? मंदिर में आराधना करने के तुलना में कौन सी गतिविधि अधिक प्रभावशाली है और अधिक आनंद खुशियां प्रदान कर सकती है? मैं आपको अतिरिक्त सुझावों का बातों की मंदिर उपस्थिति से कैसे अधिक फायदा उठाया जा सकता है। मंदिर धर्म विधियों से संबंधित सिद्धांत के समझिए, विशेषकर मसीहा का प्रायश्चित के महत्व पर। मंदिर में भाग लिए समय में यीशु मसीह से जो तुम्हारे संबंध है और उनका संबंध जो स्वर्गीय पिता से है उस पर विचार कीजिए। ये साधारण कार्य ने मंदिर धर्म विधियों के दिव्य स्वभावों की अधिक ज्ञान दिएगा। प्रार्थनाशील रूप से हमेशा उन मंदिर अतुलनीय मंदिर में प्राप्त आशीर्वादों के लिए आभार अभिव्यक्त कीजिए। प्रत्येक दिन जियो ताकि स्वर्ग के पिता और उनके परमप्रिय पुत्र प्रमाण दे सको कि वो आशीर्वाद तुम्हारे लिए कितना मूल्यवान है। मंदिर जाने के लिए नियमित कार्यक्रम बनाइए। मंदिर में पर्याप्त समय बताइए। गतिविधियों के बदलते से कीजिए ताकि तुम मंदिर के सभी गतिविधियों में भाग ले सको। मंदिर के प्रवेश पहले घड़ी को उतार दीजिए। खुले मन और हृदय से धर्म विधियों के प्रत्येक प्रस्तुति को ध्यान पूर्वक सुनो। उस व्यक्ति को प्रति जागरूक रहिए जिसके लिए तुम प्रतिनिधि धर्म विधि की पूर्ति कर रहे हो। समय समय पर प्रार्थना कीजिए कि वो धर्म विधियों के महत्व को जानेगा और उनमें फायदा उठाने के लिए योग्य रहे या योग्य बनने के लिए तैयारी करे। जानिए कि सीलिंग धर्म विधि के ऐश्वर्य को एक जीवित अनुभव से नहीं समझा सकता है। दूसरों को लिए कई बार जाकर मंदिर कार्य करने से एक व्यक्ति को और भी समझने का मौका मिलता है। जानिए कि पवित्र आत्मा से सील नहीं होने तक सीलिंग अनंत नहीं होगा। दोनों व्यक्तियों के यज्ञ होने चाहिए और उन्हें चाहना चाहिए कि सीलिंग अनंत हो। अगर एक पति पत्नी अभी मंदिर में सील नहीं हुए हैं, इन धर्मशास्त्रों पर विचार कीजिए। स्वर्गीय यश में तीन स्वर्ग या दर्जे हैं। सबसे उच्च को प्राप्त करने के लिए एक पुरुष को इस पुरोहित के वर्ग में प्रवेश करना होगा। मतलब विवाह की नया और अनंत वादा और अगर वो नहीं करेगा, वो उसे प्राप्त नहीं करेगा, और वो दूसरे में प्रवेश कर सकता है, पर वह उसके राज्य की समाप्ति होगा, होगी, उसमें वृद्धि नहीं होगा। कभी कभी जब हम एक मंदिर के समर्पित सेवा में एक गायक मंडली को सुनते हैं, मैं इतनी श्रेष्ठ भावना का अनुभव करता हूं कि वो हृदय को उन्नत करती है। मैं अपनी आंखों के बंद करता हूं और अपने मन में देखा कोई लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। मैंने महसूस किया कि वो उनकी आत्मा है जो उस प्रतिनिधि कार्य के इंतजार में है जो उनके लिए उस पवित्र स्थान में किया जाएगा। वो खुश हैं क्योंकि अंत में एक जगह है जो उन्होंने वेदियों से मुक्त कर सकती है। इस अंत को प्राप्त करने के लिए तुम्हें प्रतिनिधि कार्य करने की जरूरत है। तुम्हें अपने पूर्वजों के पहचानने की जरूरत है। नया फैमिली सर्च प्रोग्राम इस कार्य के पहले से और आसान बनाता है। ये आवश्यक है प्रभु के घर आकर उन धर्म विधियों की पूर्ति करना जिन्हें प्राप्त करने की उनकी इच्छा है। कितना आनंद है मंदिर के कार्य में भाग लेने के लिए योग्य होना।
What a joy it is to be able to participate in the work of the temple. I would like to relate an experience.
मैं अपनी पत्नी जिनिन के पूर्वज के अनुभव का वर्णन करना चाहता हूँ। उसका नाम है शेरा दी आर्मोन पीरीज। उसका विवरण प्रदर्शित करता है कि मंदिर हमारे जीवनों में क्या प्रभाव डाल सकता है। वो 31 वर्ष की थी। उसे ब्रिगम यंग ने नियुक्ति किया कि वो नावू मंदिर में कार्य करें, जहां सभी संभावित धर्मविधियों की पूर्ति की जाती थी। उस मंदिर के छोड़कर जाने से पहले उसने ये लिखा, हमने कई आशीर्वादों के प्राप्त किया प्रभु के घर में, जिसे हमें आनंद और दिलासा मिले हमारे सभी दुखों के बीच, और हमें ईश्वर पर विश्वास रखने में समर्थ किया ये जानते हुए कि वो हमारे भविष्य का अनजान यात्रा में हमें मार्ग दर्शाएंगे और हमारे समर्थन करेगा। प्रभु को पवित्र आत्मा के प्रभाव द्वारा उस मंदिर में प्राप्त ज्ञान और विश्वास बिना हमारी यात्रा उस तरह होती जैसे अंधकार में कूदना होता है।
Would have been like taking a leap in the dark.
उस यात्रा को जाने में शुरू करने के लिए और हमारी गरीबी की हालत में वो जैसे आपने मौत की और जाना है, पर हमारे पास हमारे स्वर्गीय पिता पर विश्वास था और हमने उन पर अपना भरोसा रखा, ये महसूस करते हुए कि हम उनके चुने हुए लोग थे और उनका सुसमाचार को पूरी तरह अपनाते हैं, और दुख की जगह हमने उस आनंद को महसूस किया जैसे हमारे मुक्ति पाने के दिन आगे है। अब मेरे लिए मंदिर के विशेष अर्थ के बारे में कहेंगे। इस संदेश का इस भाग भावुक होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारी प्रार्थना प्रति आभारी हूँ ताकि मैं बहुत भावुक न हो। 14 वर्ष पहले प्रभु मेरी पत्नी को ले गए। मैं उससे अपने पूर्ण दिल से प्यार करता हूँ, पर मैंने कभी नहीं शिकायत की क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो उनकी इच्छा थी। मैंने कभी नहीं पूछा कि क्यों, लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं इससे इस अनुभव से क्या सीखूं। मैं विश्वास करता हूं कि जीवन को अप्रिय घटना को सामना करने के अच्छे तरीका है। शिकायत बदले में प्रभु के धन्यवाद दिए कि जो विश्वास वो हम पर रखते हैं और कठिनाई पर काबू पाने के मौका देते हैं। हमें बच्चों का आशीर्वाद मिला, एक बेटी प्रथम संतान हमारे जीवनों के लिए भारी आशीर्वाद है। कुछ वर्ष बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हमने रिचर्ड रखा। कुछ वर्ष बाद एक बेटी पैदा हुआ, वो सिर्फ कुछ मिनट जीवित रहने के बाद मर गई। हमारा पुत्र रिचर्ड दिल के खराबी के साथ पैदा हुआ था। हमसे कहा गई था कि इलाज बिना वो 2 या 3 साल से अधिक जी नहीं सक पाएगी। आजकल उस तरह के मामला को इलाज के लिए जो उपलब्ध तकनीक है उस समय उपलब्ध नहीं था। हमें आशीर्वाद मिला कि डॉक्टर सहमत हुए जरूरी सर्जरी करने के लिए। सर्जरी को दिल की धड़कन चलते रहने पर करना था। सर्जरी हमारी बेटी जन्म और मौत के 6 सप्ताह बाद हुआ। जब ऑपरेशन समाप्त हुआ, मुख्य सर्जन ने कहा कि वो सफल हो गए और हमें सोचा कि कितना बढ़िया, हमारे पुत्र के मजबूत शरीर होगा। दौड़ने और बढ़ने के लिए हमें प्रभु के प्रति आभार अभिव्यक्त किया। फिर 10 मिनट बाद वही डॉक्टर दुखी चेहरा के साथ हमसे कहा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। ऑपरेशन का सदमा इतना था कि उसके छोटे शरीर से सह नहीं सकता था। बाद में मैंने अपनी पत्नी के गला लगाया और उससे कहा, हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे बाहर के अंतर्गत पैदा हुए थे। हमें जानते हैं कि वो हमारे साथ भविष्य में होंगे। अब हमारे पास अच्छी तरह रहने के कारण है। हमारे एक पुत्र और एक बेटी स्वर्गीय राज्य में है क्योंकि वो 8 वर्ष की उम्र से पहले मर चुके हैं। उस ज्ञान ने हमें बहुत दिलासा दी।
We rejoice in the knowledge that all 7 our children are sealed to us for time and all eternity. That trial is not
संकट हम दोनों के लिए समस्या नहीं, क्योंकि जब हम धार्मिकता से जीते हैं और मंदिर के धर्मविधियों के प्राप्त किए हैं, बाकी सब कुछ प्रभु के हाथ में है। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर सकते हैं, पर अंतिम परिणाम उनकी इच्छा के अनुसार होगा। हमें कभी नहीं शिकायत करनी चाहिए जब हम योग्य रूप से जीते हैं। 14 वर्ष पहले प्रभु ने निर्णय किया कि ये मेरे पत्नी के आत्मा की दुनिया में ले गए। मैंने मानता हूं कि ऐसे समय है जब उससे बात नहीं कर सकता, पर मैं शिकायत नहीं करता। प्रभु ने मेरे जीवन के आवश्यक समय में उसके प्रभाव के महसूस करने के मौका दिया। मैं ऐसे सिखलाना चाहता हूं कि जब हम उन मंदिर में किया बातों की पूर्ति करते हैं, जब हम धार्मिक जीवन बिताए हैं ताकि उन आशीर्वाद को कायम रख सकें, फिर चाहे जो भी हो, चिंता करने और निराश होने के कोई कारण नहीं है। मैं जानता हूं कि मंदिर में हुई धर्मविधियों के कारण मेरे पास विशेष अधिकार है मेरे पत्नी के साथ होने के लिए और उन बच्चों के साथ जो उसके साथ आत्मा की दुनिया में है। कितना अच्छा आशीर्वाद है, कितना अच्छा आशीर्वाद की एक बार फिर पृथ्वी पर सीलिंग अधिकार पाना, नहीं सिर्फ इस मरणशील जीवन के लिए पर अनंत कालों के लिए। मैं आभारी हूं कि प्रभु ने आपने सुसमाचार की पुनर्स्थापना की, जिनमें सम्मिलित हैं धर्मविधियां जो हमारे लिए दुनिया में खुश रहने के लिए और बाद में अनंत जीवन के लिए जरूरी है।
Lives in the hereafter. This
ये प्रभु के कार्य है। ईसा मसीह जीवित है। ये उनका गिरजाघर है। मैं उनकी गवाही हूँ। उनका प्रायश्चित वो आधार है जो उस प्रत्येक मंदिर में किए धर्मविधियों की प्रभावशाली बनाता है। मैं गवाही देता हूँ अपनी पूरी क्षमता से। यीशु ख्रिस्त के नाम में आमन।
We remind the brethren.
रातों को हम महापुरोहित सभा के बारे में याद दिलाते हैं जो सम्मेलन केंद्र में आज शाम 6 बजे शुरू होगी। टेबनेकल को यह प्रसंस्करण पूरे देश भर में कल सुबह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे होगा। रविवार सुबह के सभा सम्मेलन तुरंत उसके बाद होगा। विसोल लेक एरिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजन और संकेत गायन मंडली को लिए हम धन्यवाद देते हैं उसके सुंदर संगीत के लिए जिसे उन्होंने इस शाम प्रदान किया है। एल्डर रसल एम नेल्सन जो 12 चेलर के हैं हमारी सभा के अंतिम भाषणकार होंगे। उसके भाषण के बाद गायन मंडली गाएंगे सिंग ई नाउ एट पार्टिंग। गाने के संपत्ति पर एल्डर डगलस एल कैलिस्टा जो 70 के हैं द्वारा प्रार्थना की जाएगी। एल्डर नेल्सन
With you, my dear
तुम्हारे साथ मेरे भाई और बहनों मैं एल्डर नील एंडरसन के लिए प्यार प्रश्न प्रकट करता हूँ। उनके नियुक्त की प्रधान द्वारा पाप की प्रभु के आए हैं प्रधान थॉमस एस मॉन्सन के द्वारा गया। अपने जीवन भर प्रधान थॉमसन अपने युक्ति पर पवित्रता की ताकि प्रभु की इच्छा किए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता को सब दिया था उसे प्रेजेंट मॉन्सन ने किया था। धन्यवाद है प्रेजेंट मॉन्सन के कि आपने वो शक्ति इसके लिए और हम धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं एल्डर एंडरसन के। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नमूना और शिक्षाओं को अपनाते हैं। उन्होंने अपने सिखलाया कि कैसे प्रार्थना की जाती है। उसकी प्रार्थनाओं से हमसे आवश्यक शब्दों को सीख सकते हैं। हम प्रभु की प्रार्थना से शुरू कर सकते हैं और अन्य प्रार्थना मैं प्रभु की प्रार्थना को करता हूँ। Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. प्रभु की प्रार्थना को नया नियम में दो बार और मोमन की पुस्तक में एक बार अभिलिख किया गया है। उसे धर्मशास्त्र जोसेफ स्मिथ अनुवाद में भी सम्मिलित किया गया है जहां इन दो वाक्यों द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। पहला, जिस प्रकार हमें अपने पापों से क्षमा क्यों जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। दूसरा, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। माफी पर स्पष्टकरण मालिक के अन्य घटनाओं द्वारा संपत्तित किया गया है। उन्होंने अपने दासों से कहा, क्योंकि तुमने एक दूसरे के अपराध को क्षमा किया है मैं भी प्रभु तुम्हें माफ करता हूँ। अन्य शब्दों में अगर कोई माफी चाहता है तो माफ करना चाहिए। परीक्षा पर स्पष्ट कर उपयोगी है। निश्चित के ईश्वर द्वारा हमें परीक्षा में ना डालेगा। प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जैसे प्रभु ने प्रार्थना के चार अनुवाद के जैसे है उन्हें शुरुआत हमारे पिता के स्वागत से होती है जो ईश्वर और उनके बच्चों के बीच नजदीकी संबंध का महत्व देता है। वाक्य तेरा नाम पवित्र माना जाए उसके उत्तर में आराधना भरी विचार को प्रकाश डालता है जैसे हमें महसूस करना चाहिए जब हमारे प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा पूरी हो। उस विचार को अभिव्यक्त करते हैं जैसे चर्चा होती है। उनके अनुरोध दिन के रोटी में अध्ययन भरण पोषण की जरूरत सम्मिलित करता है। यीशु जिन्होंने अपने आप को जीवन की रोटी कहा है कि एक वादा किया जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा और हम रोटी और पानी योग्यता से लें। हम अभी वादा करते हैं कि उनका पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहेगा। वह आत्मिक पोषण है जिसे अन्य तारीख से नहीं प्राप्त किया हो सकता है। जब प्रभु अपनी प्रार्थना की संपत्ति करते थे, वो ईश्वर की महान शक्ति और महिमा की प्रति आभारी करते हैं। आमीन की साथ समाप्त करते हैं। हमारी प्रार्थना की संपत्ति भी आमीन से होती है। पहले ही उसका उच्चारण भिन्न रूप से भिन्न भिन्न भाषाओं में होता है। उसका समय, उसका मतलब सचमुच ये वास्तव में आमीन को पवित्र से जोड़ने से एक प्रवचन का एक प्रार्थना सत्य घोषित होती है कि मेरी भी पवित्र घोषणा है। पहले अपने चेलों से कहकर कि वेत्र दहराना या बचने या तारीख से प्रार्थना करना, इसके द्वारा प्रभु ने अपनी प्रार्थना की प्रस्तावना की। इस प्रकार प्रभु ने प्रार्थना उस अपने से नमूना को प्रस्तुत किया, और ऐसी प्रार्थना नहीं कि जैसे मालिक सिर्फ चाहते हैं कि हम ईश्वर की मदद के लिए प्रार्थना करने, जबकि हम निरंतर प्रयत्न ताकि पाप का विरोध कर और धार्मिक जीवन से सकें। प्रभु की अन्य प्रार्थना भी सिर्फ है अपने चेलों के लिए प्रणशाली रूप से अपने पिता के अनु। अपने मन में सोचिए कि दुनिया के उद्धार करता प्रार्थना में घुटने से जैसे कहा, This word spake Jesus, lift up his voice heaven and said, Father, glorify thy son, that thy son also may glorify thee. I have finished the work which thou hast gavest me to do. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them. And I have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. मैंने उनके लिए विनती करता हूँ। प्रभु की प्रार्थना से हम सीखते हैं कि कितने सहायक से पिता के साथ हमारे मध्यस्थ और वकील के रूप में अपनी जिम्मेदारी को वो महसूस करते हैं। उतने शौक, उतने आदेश के पालन करने और अंत तक सहने के लिए हमें अपनी जिम्मेदार को महसूस करना चाहिए। प्राचीन अमेरिका के लोगों के लिए यीशु द्वारा एक प्रदान के कई अभिलेख वर्णन करते हैं। जिस समय वो पिता के हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, उस समय हमारी आत्माओं में जो आनंद भरी हुआ था, वैसे आनंद कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर यीशु ने कहा, अपने विश्वास के कारण तुम धन्य हो, और सुनो, मेरे आनंद परिपूर्ण है। यीशु ने एकता के लिए निवेदन की, हे पिता, उन्हें कहा, मैं उनके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ में विश्वास करें, जिससे कि वो उनके अंदर प्रकार होकर प्रकार पिता अपने मुझ में है, कि हमको ही हम भी एकता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि एक दिल और एक मन के हो प्रभु के चुनने हुए और अपने प्रियजनों के साथ को हम खुद और अपने पड़ोसियों के बीच आपसी संबंध और सम्मान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम दूसरे के लिए प्रभाव करेंगे, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जेम्स ने सिखलाया, क्योंकि धर्म में जान की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु द्वारा प्रार्थना पर अनेक सब लिखा गया है। उन्होंने अपने चेलों से कहा, इसलिए तुम पिता से सदैव मेरे नाम से प्रार्थना करो। उद्धारकर्ता ने ये भी कहा, तुम सदैव मेरे नाम पर पिता से अपने परिवार में प्रार्थना करिए। आज्ञादारी से हम पर सबक को लगाव कर सकते हो, जब हम यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्ग पिता से प्रार्थना करते हैं। प्रभु की एक और प्रार्थना एक सबक को सिखलाती है, जो तीन क्रमवार चरणों में दोहराई गई है। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तुमने लोगों को जिन्होंने मेरे चुना है पवित्र आत्मा दिया है। हे पिता, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जिन्हें तुम भी लोग इनके बातों पर विश्वास करो, उन सभी को पवित्र आत्मा देना। हे पिता, तुम इन्हें पवित्र आत्मा के इसलिए दिए, ये मुझ में विश्वास करते हैं। अगर पवित्र आत्मा का सचार उतना आवश्यक है, हम पे भी उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम सभी निमंत्रण और बच्चों के मदद करने, ताकि पवित्र आत्मा के तोहफा वशित कर सकें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अच्छाई के लिए आवश्यक शक्ति बन सकता है, जब हम इस लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने तरीके को सिखाया है जिनके द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुधारी जा सकती है। उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने कहा है, धार्मिक का गीत मुझ में प्रार्थना है और उसका जवाब है सिरों पर आशीर्वाद के रूप में है। प्रार्थना का उपवास द्वारा सुधारी जा सकती है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अभी से प्रार्थना और उपवास करो। उपवास में बुद्धि के नेताओं प्रधान जोसेफ स्मिथ द्वारा की गया था, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि बहुत ज्यादा करने भी कोई चीज है। एक इंसान तब तक उपवास और प्रार्थना कर सकता है जब वो अपने आप को मार नहीं दे, और उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसमें बुद्धिमानी है। प्रभु एक साधारण प्रार्थना को सुन सकता है, जो विश्वास के जय को शब्दों में वो उपवास को मांगेगा, जो जिस काम के जितनी तड़पड़ाहट और प्रभावशाली से प्रभु वो स्वीकार करेगा जो प्राप्त है, जो अधिक प्रशंसा और संतुष्टि और साथ होगी उसकी तुलना, जो बहुत लंबी और अनावश्यक होगी। बहुत ज्यादा या अनुक्षा के धरना हमारी प्रार्थना की लंबाई पर भी लगा हो सकती है। गिरजाघर सभा में एक संपत्ति प्रार्थना के लिए जरूरी नहीं है कि इस प्रति संदेश को संसारिक सम्मिलित कर हो, और बिना कार्यक्रम का प्रचार होने की जरूरी नहीं है। नीची प्रार्थना उतनी लंबी हो सकती है जितना हम चाहते हैं, पर सार्वजनिक प्रार्थनाओं छोटी प्रचारिक होना चाहिए। प्रभु का परिवार आत्मा हमारे साथ है, या जो हो उसके ऊपर घोषणा होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना को अन्य तरीके से सुधारी जा सकती है। हम उचित शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेष सम्मान ईश्वर का संबोधित करेंगे, जबकि दैनिक और प्रसाद के संसारिक अर्चन और भी हो रहे हैं। हम कहा गए हैं कि प्रार्थना को औपचारिक उचित भाषा की रक्षा करेंगे। हमारे प्रार्थना में यू, यो और योज की जा सकती है, हम और आप और ये सब। ऐसा करने से हम विनम्र बन में मदद मिलती है। वो हमारी प्रार्थनाओं में सुंदरता ला सकता है। धर्मशास्त्र घोष कहता है, प्रार्थना व्यक्तिगत आयोग से शुरू होती है। देखो, प्रभु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खेलना, तो वो उस पर बिंतार आता, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। वो द्वारा खुलता है जब हम अपने स्वर्ग पिता और यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करते हैं। हमें कब प्रार्थना करनी चाहिए? जब भी हमारी इच्छा हो। एल्मा ने कहा, अपनी सभी कामों के लिए प्रभु से राय लो, और वो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी निर्देश करेगा। और रात को जब तुम वर्णन करने जाओ, प्रभु के स्मरण करो, और जब बोर को हो तब परमेश्वर के प्रति तुम्हारा हृदय होना चाहिए, और तुम्हें ये सब कीजिए। यीशु ने अपने चेलों से याद दिलाया कि वो अपने दिलों में हमेशा प्रार्थना करें। गिरजा घर के सदस्य के प्रार्थनाओं है कि परिवार प्रार्थनाओं में प्रत्येक सुबह और शाम अपने घुटनों पर, और दैनिक व्यक्ति प्रार्थना करें और भोजन की आशीर्वाद दें। प्रधान मोन्सन ने कहा, जब हम प्रभु से अपनी परिवार और व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, हम उन पर विश्वास और भरोसा के साथ करें, और ऐसी तरह संसारिक और आत्मिक आशीर्वादों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब विनती करें जैसे यीशु प्रभु ने प्रार्थना में की, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह दुनिया के उद्धारकर्ता, जिन्होंने अपनी रक्त से हमें मुक्त किया है, हमारे मुक्तिदाता और आदेश हैं। उन्होंने मरणशाली जीवन को संपत्ति उन्होंने प्रार्थना की है। परम पिता पुत्र के रूप में पिता के इच्छाकार अनुसार हो, उसे महत्वान समय पर उद्धारकर्ता ने चिल्लाया, पिता तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो और हमेशा महिमा तुम्हारी हो। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी इच्छा हो।
Thy will be done.
और हम प्रार्थना करें कि प्रभु का राज्य पृथ्वी पर हो, कि लोग तैयार रहें उन दिनों के लिए जब प्रभु आएगा अपनी महिमा की चमक में, उस ईश्वर के राज्य के मिलने के लिए जो पृथ्वी पर है। हमारी दैनिक जीवन में, हमारी नेक समय में, हम उस पूर्ण से प्रभु के संग शब्दों को लागू करें। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
To our heavenly Father.
हे हमारे शक्त पिता, हम धन्यवाद हैं जो हम आपको पवित्र आत्मा था के और जो बयान दिया गया है, धन्यवाद देते जो संगीत के जो आज गाए गए हैं, जो हमें आपके और करीब लेकर याद करते हैं, आपके और हमारे बीच के फासले के हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस गिरजा के सदस्य जो आपके नाम पे है, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते पुत्र के लिए जो हमारे उद्धार करता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमें आशीष दें और आशीष दें ताकि और हम समझ सके और याद रखें जो जो आज सीखे गए हैं, ताकि हम आपके और करी जा सकें और आपके कार्य में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन।
This has been a broadcast. ये अंतिम
दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर के वैश्विक महासम्मेलन के प्रशासन है। भविष्यवक्ता गिरजा के महाअधिकारियों और महाप्रधिकारियों से चुने गए थे। संगीत सोल लेक एरिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजन और सेंट क्वाया द्वारा प्रदान किया गया था।
बोनेवेल
कम्युनिकेशन द्वारा इस प्रशासन को जनता सेवा के रूप में प्रोत्साहित किया गया है। क्या कार्य का कोई भी प्रस्तान अभिलेखन प्राधिकरण के अन्य इस्तेमाल में बिना लिखित अनुमति का माना गया है।